તારીખ 18-9-1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 30
પત્ર ખંભાત કે મુમુક્ષુ ભાઈઓ કે પ્રતિ લિખા ગયા હૈ पत्र का विषय है मुमुक्षुता का प्रारंभ कैसे होता है और मुमुक्षुता बढ़कर के स्वरूप की पहचान तक पहुंचती है तो कैसे कैसे परिणाम होता है तो वहां तक पहुंचती है
जी।
तो इसका क्रम क्या है? मुमुक्षुता का क्रम क्या है? उस विषय पे सारा पत्र चला है। तो इस प्रकार से इस विषय का निरूपण चालू किया कि दोष के तो अनंत प्रकार हैं। जीव के दोष के तो अनंत प्रकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष कौन सा है? कि सबसे बड़ा दोष वो है कि मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं की। वो
जी
मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं की तो जीव ने धर्म साधन तो बहुत किए हैं।
जी
ऐसा नहीं है कि धर्म साधन जीव नहीं करता है। जिस संप्रदाय में वो जन्म लेता है उसी संप्रदाय में कुछ न कुछ धर्म साधन तो करता ही है वो।
बराबर।
जैन संप्रदाय में जन्म हुआ तो अपने संप्रदाय में जो भी धार्मिक प्रक्रिया चलती है वही करता रहता है। फिर भी इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है, ऐसा कहा इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। तो मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं की इसका मतलब के जो संसार की वृत्ति है जीव को संसार को पाने की वृत्ति यूं की यूं रही। धर्म साधन करते हुए भी करने के बावजूद भी संसार की वृत्ति यूं की रही, यानी संसार की रुचि जो है वो यूं की यूं रही। संसार से छूटकर जन्म मरण से छूटकर मुक्त होने की सच्ची भावना खरी भावना अंतर की भावना कभी पैदा नहीं हुई है। ये जीव का सबसे बड़ा दोष है। अब एक और बात इसकी गहराई में जाकर के स्पष्ट करना चाहिए कि मोक्ष की इच्छा है या मोक्ष की भावना है इसका पता कैसे चले? किसी को भी पूछो तो हमको तो मोक्ष की भावना है ऐसा बोलेंगे कहेंगे। तो श्रीमद जी ने इस पर अस्ति नास्ति से दो लक्षण बताए हैं
जी।
एक तो महाशक्ति के परिणाम में अकुलाहट होना और मोक्ष के विषय में प्रयास करना। लेकिन मोक्ष के विषय में जो प्रयास है उसकी भी शर्त क्या है? कि महाशक्ति के परिणाम में अकुलाहट होकर के प्रयास होना, अकेला प्रयास होना वो नहीं। क्या फर्क है उसमें? कि जैसे हम तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले लोग हैं, दूसरों की चर्चा अपन नहीं करेंगे, अपनी चर्चा कर लें कि हम लोग तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं
जी।
कोई हमें पूछेंगे तो क्यों आप क्यों तत्व ज्ञान का अभ्यास रोजाना करते हो, क्यों स्वाध्याय करते हो? तो कहेंगे कि हमको सम्यक दर्शन पाना है, और सम्यक दर्शन इसलिए पाना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से मोक्ष तो होता ही है,
बराबर।
इसलिए अंतिम भावना तो हमारी भी मोक्ष की ही है
जी।
इनको पूछते हैं कि मोह शक्ति के परिणाम में अकुला करके ये हुआ है या वैसे ही हुआ है,
बराबर
बता दीजिए। कौन से मोह शक्ति के परिणाम में अकुला करके आपको ये प्रयास हो रहा है? बहुभाग ऐसा देखा जाता है कि स्वाध्याय के काल में शास्त्र स्वाध्याय हो जाता है, पर घर और दुकान जाकर के हमने वैसे ही परिणाम किए जो पहले हम करते थे वैसे
जी।
जैसे हमारा राग कुटुंब के प्रति, पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, जैसे ही अपनत्व का परिणाम था वैसे ही रहा। स्वाध्याय में हमने भिन्नत्व का स्वाध्याय किया लेकिन परिणमन में हमने एकत्व का जो अभ्यास है वो ही चालू रखा,
बराबर।
और ये परिस्थिति इतनी नॉर्मल है, इतनी नॉर्मल है कि हमको इसमें कोई बड़ा दोष दिखता ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष है,
बराबर।
तो मुमुक्षुता को उत्पन्न होने नहीं देता। क्यों नहीं दिखता? एक माहौल बना रहता है इस संसार में कि जो सब करता है उसमें कोई दोष नहीं,
बराबर जी।
संसार में जो सभी लोग करे उसमें कोई दोष गिना ही नहीं जाता। वो बात वहां तक है कि कोई भी रूढ़ी रिवाज हो जाए
जी,
इस विषय में कोई समझते ही नहीं। कुछ दृष्टांत लेने योग्य है कि आज से 1500 साल पहले कभी बरसात नहीं आती थी, लोग यज्ञ यागादि करके पशु का होम करते थे, हवन करते थे, बकरे को काट करके डाल देते थे, भैंसा को पाड़ा को काट देते थे। पर वो परंपरा कई जगह और भी आज भी रही है, बहुत कम जगह लेकिन रही है
जी।
उन दिनों में सेठिये लोग, राजा लोग सभी करते थे, तो हिंसा को हिंसा के रूप में देखा नहीं जाता था, धर्म के रूप में देखा जाता
जी।
दूसरा अब श्वेतांबर है, भगवान को श्रृंगार करते हैं, किसको श्रृंगार करते हैं? गीतराज परमेश्वर को श्रृंगार श्रृंगार करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनाई देगा क्या? सुनाई देगा?
चलो तो बताएंगे, हमारी
तीर्थंकर भगवान तो वितराग हैं
जी।
प्रतिमा जी को नाम देंगे भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर की वो भी प्रतिमा को स्थापित करते हैं, पर वितराग को श्रृंगार कॉमन सेंस में बैठे ऐसी बात है क्या?
नहीं होता।
अब इनको भी पूछ लीजिए कि आप कभी बिना कपड़े गहना पहनते हैं क्या? हाँ, संसार में कहीं बनता है क्या कि वैसे तो नंगे रहे और गहना पहन के निकल जाए, कोई माथे पे मुकुट लगा दे, गले में हार लगा दे। लेकिन जो सब करते हैं ना वो नॉर्मल, उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। वैसे हम हमारे परिवार वाले में अपनापन करे तो वो तो सब करते ही हैं, पड़ोसी वैसा ही करते हैं, सारे गांव में सब ऐसे ही करते हैं, इसमें हमारा दोष क्या हुआ? आपका दोष यही हुआ कि आप भिन्नत्व का स्वाध्याय करते हुए भी एकत्व को छोड़ते नहीं।
जी,
ये जो हमारे मोह के परिणाम है
जी,
किस कारण से एकत्व होता है? मोह के कारण से। तो उसमें आकुलता हुई क्या या रस आया? क्या हुआ?
रस आता है।
तो हमारा प्रयास जो है धार्मिक साधन वाला वो मोक्ष के लिए नहीं है, ये हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए।
तो उस पुरुषार्थ को मिथ्या पुरुषार्थ बोलेंगे?
मिथ्या पुरुषार्थ जी। चाहे हम मोक्ष की कितनी भी चर्चा करें, सम्यक दर्शन की कितनी भी चर्चा करें, आत्मा की कितनी भी चर्चा करें, और कितना भी रटन करें, हमारा नुकसान का व्यापार वैसा का वैसा चलता है।
बराबर।
और नुकसान में कभी मुनाफा
होता नहीं,
होता ही नहीं
जी।
इसलिए बहुत गहराई से इस बात का प्रतिपादन यह है कि जीव का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसने मुमुक्षुता ही उत्पन्न नहीं की।
बराबर।
अनंत काल में अनंत बार धर्म साधन करते हुए भी एक बार भी सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, अगर होती तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहते।
बराबर।
कारण होवे और कार्य नहीं होवे, ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है। कारण कार्य का सिद्धांत है
जी,
उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान में तीन प्रकार की विपरीतता है ना, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण कार्य विपरीतता।
दूसरी कौन सी बताइए?
कारण कार्य
विपरीतता, पहले वाली
है स्वरूप
भेदाभेद। अच्छा, भेदाभेद
स्वरूप विपरीतता
जी,
भेदाभेद विपरीतता और कारण कार्य विपरीतता। सम्यक ज्ञान में ये तीन विपरीतता नहीं होती, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये विपरीतता रहेगी तब तक तो मुमुक्षुता भी नहीं आएगी।
बराबर।
समय ज्ञान को तो बहुत दूर की बात है। तो इस विषय में ये बात रही कि जीव को ऊपर ऊपर से तो मोक्ष चाहिए
जी,
वास्तव में जीव की ईमानदारी इसमें नहीं है।
बराबर।
सच्ची मुमुक्षुता मैंने ईमानदारी पूर्वक मोक्ष की चाहना भावना
जी,
और इसलिए शब्द प्रयोग क्या किया, एक मोक्ष के लिए हमको मोक्ष भी चाहिए और संसार भी चाहिए। जबकि बात एक संसार चाहिए वही है, मोक्ष चाहिए वो बात है ही नहीं। वहां तो हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की सही भावना जिसको हम मुमुक्षुता कहते हैं, ये मुमुक्षुता प्राप्त होने में कार्य कौन सा हुआ? पद्मचंद जी बहुत समझने लायक ये चीज है कि उस वक्त कार्य क्या हुआ, कि उस वक्त अभिप्राय की फेर बदली हुई है। सारी मुमुक्षुता का जो प्रकरण है और जितने भी स्टेज हैं मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के पहले सही मुमुक्षुता के, उसमें कौन सा काम होता है? अभिप्राय की फेर बदलने का काम होता है।
बराबर।
अभिप्राय की भूल पूरी भूल है। बराबर
जी।
अभिप्राय की भूल अधूरी भूल नहीं है। और अभिप्राय की भूल कहां कहां होती है, कैसे कैसे होती है, तो इसकी गहराई में गए बिना मालूम नहीं पड़ता। ये परिस्थिति है। तो शुरू से लेकर के हमारे जितने विपरीत अभिप्राय है ये मुमुक्षुता की भूमिका में बदल करके सही होने लगते हैं। तो सच्ची मुमुक्षुता में ये अभिप्राय वाली भूल में कौन सा फर्क हुआ कि अनादि से हमारे अभिप्राय में संसार की उपासना रही थी
जी,
और धर्म साधन करते करते भी हमारे परिणाम ऐसे चल जाते थे बिना सोचे बिना समझे बिना कंट्रोल हुए, तो कोई प्रतिकूलता नहीं आए तो अच्छी
जी,
अनुकूलता बने रहे तो अच्छा
जी,
और कोई आई हुई है तो मिट जाए तो
अच्छा।
क्यों? क्योंकि कुछ धर्म तो करते हैं
जी,
धर्म के फल में कुछ पुण्य तो बंधेगा, ये बात आए बिना रहेगी नहीं। अन्य मत में तो कुदेव की मान्यता में तो यही चला है
जी,
कि अपने देवों के प्रति ऐसे ही भीख मांगते हैं लोग। लेकिन जैन संप्रदाय में संप्रदाय के लायक क्रियाएं करते हुए भी अगर हमें प्रतिकूलता को हटाना और अनुकूलता को जुटाने का अभिप्राय रहा
जी,
ये संसार की उपासना का अभिप्राय है।
बराबर।
और सच्ची मुमुक्षुता में संसार की उपासना का अभिप्राय का नाश होता है।
बराबर।
अब देखिए कितना बड़ा काम हुआ ये, एक मोक्ष के लिए ही वो प्रयास करता है जो संसार के उपासना जिसको अभिप्राय में से निकल गया, परिणमन में से नहीं निकली। परिणमन में तो अविरत सम्यक दृष्टि होगा, वहां तक सामान्य संसारी जैसा इसका जीवन रहेगा।
बराबर।
अज्ञानी जैसा। कैसा?
अज्ञानी जैसा।
जैसे अज्ञानी के बाह्य जीवन रहता है वैसा ही रहेगा, ये बात बनेगी। क्यों? कि वो ज्ञानी ने भी पूर्व कर्म तो अज्ञान दशा में ही बांधे थे, जो ज्ञान दशा में उदय आते हैं तो वही परिस्थिति बनेगी संयोग वियोग की। तो बाद में आत्मा बदल गया अंदर में, आत्मा तो पूरा विमुख हो गया है इसे, लेकिन बाहर की परिस्थिति तो वैसे ही दिखेगी। राजा हो राज करेगा, मजदूर होगा मजदूरी करेगा, बनिया होगा व्यापार करेगा, जो भी जैसा है पूर्व कर्म अनुसार करेगा चारों गति में। नारकी होगा तो वहां नारकी का लायक दुख भोगेगा, स्वर्ग में होगा तो स्वर्ग के लायक संयोग को भोगेगा देवदेवियों, और त्रियंश होगा तो त्रियंश के लायक उदय रहेगा उसको
जी।
उसमें तो इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र कुछ कोई कर सकते हैं
नहीं,
नहीं है। ये वस्तु स्थिति है
जी।
आत्मा अंदर से बदलती है। कब से बदलती है? कि सच्ची मुमुक्षुता पैदा होती है तब से। ये बहुत बड़ा अभिप्राय का फेरफार है, और ये अभिप्राय अंतःकरण की शुद्धि, ईमानदारी मतलब क्या, प्रामाणिकता मतलब क्या, अंतःकरण की शुद्धि से शुद्ध अभिप्राय हुआ है कि मुझे किसी कीमत पे अभी संसार
नहीं चाहिए,
चाहिए।
बराबर
देखो 128 पत्र में उन्होंने कितनी जोर से वो बात किया है, इतने जोर से बात किया है नंबर है 222 गुजरात में
128 बोला आपने
128 पत्र
जी,
तो उसमें है चार पैराग्राफ पूरा करके पांचवा को भी पूरा करके छठे पैराग्राफ में बात है। चाहे जैसा हो, चाहे जितना दुख आप रो सहन करो, चाहे जितना परेशान सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां सहन करो, आपड़ो चाहे जितनी आदियां आपड़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दुर्निमित हो, परंतु ऐसा करना ही है। ऐसा मैंने संसार का नाश हुए और मुक्त दशा हुए ऐसा करना ही है। इतनी मजबूत नींव मोक्ष के लिए डाली जाती है, ये क्या है? फाउंडेशन है, निर्वाण पद का, सिद्ध पद का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन का स्टोन कितना मजबूत होता है कि चाहे चाहे सारी दुनिया बदल जाए, मेरा अभिप्राय नहीं
बदलेगा।
ऐसा शुद्ध अंतकरण से जिसको मोक्ष की कामना होती है, उसको संसार के महाशक्ति के परिणाम में अकुलाहट हुए बिना रहती नहीं, ये इसका सिम्टम है। अब एक और बात कहेंगे कि ऐसा शुद्ध अंतकरण किसको होता है, किस कारण से होता है, क्यों? कि जीव ने संसार में बहुत दोष किए हैं
जी,
राग भी तीव्र किया है, द्वेष भी तीव्र किया है और न जाने क्या क्या किया है, स्वच्छंद का भी कोई पार नहीं।
बराबर,
ये सभी दोषों का पश्चाताप हुए बिना अंतकरण शुद्ध नहीं होता
जी।
बिना पश्चाताप शुद्धि नहीं
जी,
पश्चाताप है वो एक प्रकार का प्रायश्चित है
जी,
पश्चाताप है वो एक प्रकार का
प्रायश्चित
है। अभी तक हमने जो भी भूल किया, दोष किया, बहुत प्रकार के किया, इसका खेद भी हमें नहीं हो, तो उस दोष के कारण से जो मलिनता हो चुकी है हमारे परिणमन में, हमारी परिणति में, उसकी जो अवरोधक परिस्थिति है वो तो वैसे के वैसे बनी रहेगी।
बराबर,
बहुत गहराई में जाकर के ये मुमुक्षुता का विषय का छानबीन हुआ है यहाँ पर, कि जिसको अपने दोषों की 128 पत्र में पहले चार पैराग्राफ उसी पर लिखा है श्रीमद् जी ने, और जिसको इसके फल स्वरूप होने वाला जो परिक्रमण हमने जो दोष किए हैं उसके फल स्वरूप होने वाला जो परिभ्रमण है, तो परिभ्रमण की भयंकरता जिसको भाष्यमान हुई हो उसको उसकी चिंता, उसके खेद, उसका अंतकरण से उसकी वेदना आए बिना नहीं रहती
जी।
पर जब ये वेदना आती है, ये चिंतना उत्पन्न होती है, तभी सही रूप में उदासीनता और वैराग्य का उत्पन्न होना बनता है
जी।
इसके पहले वैराग्य और उदासीनता तो बहुत बार आई है और जिन दीक्षा धारण करके द्रविलिंग की प्राप्ति हो चुकी है
जी,
लेकिन सच्ची मुमुक्षुता वहां भी नहीं आई। हजारों रानी राजपाट का त्याग करके जंगल में निकल जाने वाले को सच्ची मुमुक्षुता नहीं आई। अज्ञान के पाठी तो सच्ची मुमुक्षुता नहीं आई
जी।
ये चीज क्या है, इस पर प्रकाश डाला है कृपालुजा में, श्रीमद जी ने इस चीज पर प्रकाश डाला है, क्योंकि हमारी नजर वहां जानी चाहिए कि अंग पूर्वक अभ्यासी और पंचमावृत आदि के पालन करने वाले को क्या चीज रह गई जिससे मोक्ष मार्ग में नहीं आए और उसका परिभ्रमण यूं का यूं रहा, भूमि ग्रह तक गया
जी,
अनंत बार, एक बार नहीं, नौमी ग्रेवक तक अनंत बार गया, क्या चीज रह गई, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और एक मेंढक या और एक सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, तो उसने क्या चीज किया अंदर में, कौन सी बात थी वो जिसे उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। मोक्ष मार्ग तो कार्य है, इसका कारण कौन सा है
बराबर,
उसकी जांच तलाश में हमें जाना चाहिए, अच्छी तरह जाना चाहिए
जी।
और उस विषय में पूरी छानबीन होनी चाहिए। उस विषय में कोई छानबीन हम करें नहीं और दूसरी दूसरी बातें चले हमारे स्वाध्याय में, सच्ची मुमुक्षुता आएगी कहां से
जी,
कभी नहीं आएगी, सारा जीवन चला जाएगा। तो उन्होंने एक पूरी मुमुक्षुता की लाइन चॉकआउट करके रखी है इधर, जैसे चार गुणस्थान से 14 गुणस्थान स्थापित किए हैं, वैसे उन्होंने मुमुक्षुता का विषय स्थापित किया है
जी।
जो आत्मा संसार से छूटने के लिए परिभ्रमण की चिंता में वेदना में आकर के उदासीनता को प्राप्त होता है, उनको संसार के परिणाम होते हैं तो उसमें आकुलता होती है और उसका निर्धार होता है कि अब किसी कीमत पे मुझे छूटना ही है, मुझे किसी हालत में छूटना है, छूटने के लिए मेरी कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल मेरे को ये काम करना है, उतनी सुविधा हो तो मैं मेरा आत्महित करूं, आत्मकल्याण करूं, वो बात नहीं है
बराबर।
एक मोक्ष के लिए ही हर हालत में, कब, हर हालत में हमको यही काम करना है और शीघ्रातिशीघ्र हमें पूर्ण पद को प्राप्त करना है, देरी भी नहीं लगानी
जी।
बीच में काल जाता है वो पुसाता नहीं है, ऐसी परिस्थिति जब आती है उसको कहते हैं कि सच्ची मुमुक्षुता आई। सच्ची मुमुक्षुता आई तो वहां से अपने आप परिणाम में कौन सी प्रक्रिया चालू होती है इसका वर्णन अब करते हैं श्रीमद जी, कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण, क्या आगे इतनी बात लिया है कि तीव्र मुमुक्षुता के विषय में अत्र लिखना नहीं है, हमको तो क्रम बताना है ना
जी,
तो ऊपर वाली बात नहीं बतानी है, मुमुक्षुता के विषय में लिखना है, बताना है कि यह उत्पन्न होने का लक्षण अपना दोष देखने में अपक्षपातता है कि जिससे स्वच्छंद का नाश होता है। तो क्या हुआ कि सहज रूप से जो अपने चलते हुए परिणाम में दोष को निष्पक्ष होकर के देखता है, तो मानना चाहिए कि उनको मोक्ष होने की सही भावना हुई है। सम्यक दृष्टि है, ये गुण की दृष्टि है, वो स्वभाव की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? स्वभाव की दृष्टि है और गुण की दृष्टि है। ये स्वभाव दृष्टि यानी गुण दृष्टि उत्पन्न होने के पहले जीव के संसार में अनादि से दोष दृष्टि रही है। दोष दृष्टि क्या काम करती है विचारने लायक है कि दूसरों के दोषों को देखेगा। नजर कहां जाएगी? दूसरे के दोषों पर जाएगी। गुण कहीं होगा तो भी वो देख नहीं सकेगा।
जी।
अगर कोई हमारा दोष दिखाएगा तो हमको ये अच्छा लगेगा नहीं।
जी।
ये दोष दृष्टि का प्रभाव है कि कोई दोष दिखाने वाला अच्छा नहीं लगेगा और वो बात भी हमको सुनाएगी
नहीं।
या तो हम उसका प्रतिकार करेंगे यानी विरोध करेंगे, या तो हम बचाव करेंगे।
जी।
ये दोष दृष्टि का कार्य है यानी स्वरूप है। अनादि से सभी जीवों में है। जब सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती है तब ये परिणमन में फर्क आता है। अपना दोष अपक्षपात रूप से वो देखने को लगता है। यही काम उसने प्रैक्टिकली चालू कर दिया। दोष देखना उतना ही नहीं, अपक्षपात रूप से दोष देखना। और आजकल हमारी हालत वो है कि हमारा दोष तो हमको दिखाई नहीं देता है, पर निर्दोष परमात्मा हमको दिखाई देता है, ऐसी हम बात करते हैं। कितना बड़ा विप्रयास है।
बराबर।
ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। हमारा जो मूल स्वरूप है निर्दोष परमात्मा, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है। और दोष तो बहुत स्थूल है। दोष देखने की प्रैक्टिस भी नहीं हुई, उसमें अपक्षपातता भी नहीं आई, और सीधा ही हम सूक्ष्म स्वभाव को देखने
संभव नहीं,
एक संभव नहीं है।
बराबर।
जिसको बड़ी चीज नहीं दिखती उसको छोटी चीज दिखती है, वो मानने लायक बात है क्या?
नहीं,
नहीं। ये मानने लायक बात
नहीं
है ही नहीं। इसलिए यहां से मुमुक्षुता कुछ अंश में आगे बढ़ती है। जब कोई मुमुक्षु मोक्ष के लिए प्रयास करता है तब इसका प्रयास में शुरुआत कहां से होती है? कि अपने चलते हुए दोष को अपक्षपात रूप से देखने का उसका प्रैक्टिस चालू होता है।
ये मुमुक्षुता की शुरुआत
है।
इसको मुमुक्षुता की शुरुआत,
मुमुक्षुता की शुरुआत में ये सब बनता है। ऐसा ही बनता है
जी।
क्यों? क्या आपका नुकसान कहां होता है? नुकसान कहां होता है कि चलते हुए परिणामों में जहां दोष हो रहा है वहीं आपका नुकसान होता है
जी।
उस नुकसान तो आपके ध्यान में नहीं आता,
नहीं
आपके ज्ञान में नहीं आता, लक्ष्य में नहीं आता, तो मुनाफे का व्यापार होगा कहां से परिणमन में? परिणमन की शुद्धि माने दोष का अभाव
जी।
दोष का अभाव सम्यक प्रकार से तो सिद्धात्मा के अवलंबन से होता है, लेकिन वो कब के सिद्धात्मा का पता चलता है? तब हमारे पास तो इसका एड्रेस है ही नहीं, इसलिए हम वहां पहुंचे नहीं। संसारी जी के पास तो उसका एड्रेस भी है ही नहीं, पता ही नहीं है पहुंचे तो कहां से। तो उसके लिए दोष का अभाव करने की योजना कौन सी है?
अंदर में कोई निर्दोष स्वभाव है,
है?
अंदर में निर्दोष वस्तु है, उसी को देख करके दोष दिखेगा के बिना निर्दोष वस्तु देखे दोष दिख जाएगी?
ना नहीं, दोष तो वैसे ही दिखेगा।
तो निर्दोष स्वभाव नहीं है,
हुँ?
अंदर में निर्दोष स्वभाव जो पड़ा हुआ है,
हाँ?
अगर उस पर दृष्टि नहीं है तो दोष
दृष्टि तो उसमें होना भी से है ही नहीं, और कोई वैसे आ जाएगी भी नहीं कोई अंदर से।
तो इस कथन को तो फिर पर्यायार्थी कैसे कहने में आएगा, व्यवहार से कथन कहने में आएगा?
एक कथन कुछ भी हो
जी,
अपने तो प्रैक्टिकल साइड से आगे बढ़ना है। कि भाई साहब का ये कहना है कि निर्दोष परमात्मा को दृष्टि में रख करके दोष देखना या वैसे ही दोष देखना, लेकिन निर्दोष परमात्मा का तो पता ही नहीं संसारी जीव को, मुमुक्षु जीव को, कहां से देखेगा? उसका स्वरूप का पता है ही नहीं, पहचाना भी नहीं है। पहचानने के लिए तो ये प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है
जी।
बिना पहचान दृष्टि आएगी कहां से? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। देखो कहने की जो चीज थोड़ी ना है,
है? माने पात्रता की बात चल
रही है। हाँ, ये पात्रता की बात है।
पात्र होगा तभी आगे बढ़े।
बिना पात्रता कोई मुमुक्षु, कोई ज्ञान दशा उत्पन्न होती है क्या? हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। तो पात्रता में क्या होता है?
ये दोष है,
है?
ये दोष है हमारा, ये दोष हमने कैसे जाना? हमारे अंदर दोष है पर्याय।
हमारे में जो दोष है
किस 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 हिसाब से जाना?
वो दोष कैसे जानने में आता है? कि अपने और दृष्टि होती है तब जानने में आता है। अपने और मैंने कहा कि अभी तक हमारी दृष्टि बाहर उतनी रही कि हम दूसरे को दोष को देखते रहे
जी।
हम दोष को नहीं जानते वो बात नहीं है, आत्मा को जाने बिना हम दोष को नहीं जानते सो बात है ही नहीं। आप गुस्सा करेंगे हम कहेंगे कि आप दोष करते हैं, आप चोरी करेंगे हम कहेंगे कि आप झूठ बोलते हैं, आपका दोष है। कई प्रकार के दोष हम जानते हैं, दोष को नहीं जानते सो बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुद्धात्मा को जाने वही दोष को जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोष को हम अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरे के दोष को तो हम छोटे छोटे दोष को भी पकड़ लेंगे कि इधर मायाचारी होती है, उधर होता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, लेकिन दूसरे के।
भाई श्री, यह प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि दोष को दोष तब जानेंगे जब निर्दोष चीज पर लक्ष्य होगा।
ऐसा है, ये एक बात कंपैरेटिव होगी
जी।
लेकिन निर्दोष स्वरूप जो हमारा है वो तो हमारे ज्ञान में आया
नहीं
है।
आया बराबर है,
लेकिन दोष का अभाव इसी का नाम निर्दोषता है
जी।
और दोष में हमको अकुलाहट हुई, क्या हुआ? मरा शक्ति के परिणाम क्या है? दोष है
जी।
उसमें अकुलाहट भी ये पात्रता का स्वरूप है। तो अकुलाहट में क्या अभिप्राय रहा कि इसका अभाव करना है, ये हमें नहीं चाहिए। जहां जहां अकुलाहट होती है, आकुलता होती है, जीव उसको नहीं चाहता। देखिए, जीव का स्वभाव सुख है, सुख स्वभाव कभी जीव ने देखा नहीं
जी।
फिर भी सुख चाहता है कि नहीं चाहता है?
बराबर चाहता है।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सुख स्वभाव देखे तो ही सुख को चाहे।
लेकिन वो जिस सुख की कामना करता है वो तो आकुलता वाला सुख है।
नहीं, ठीक है, लेकिन चाहिए तो सुख ना, सुख का स्वरूप मालूम नहीं है, लेकिन चाहिए क्या?
सुख ही चाहिए।
अच्छा, हमारा केवल ज्ञान स्वभाव है
जी।
हमको सब जानने की भावना रहती है कि नहीं
रहती है?
हैं, क्यों? हमारा स्वभाव है वो। मतलब वो है कि स्वभाव जाने बिना भी परिणाम ऐसे ही उठेगा, परिणाम ऐसे ही उठेगा, क्योंकि अंदर में स्वभाव वो पड़ा है। इसलिए अब उसको पहचानना है, जानना है, इसकी प्रक्रिया ज्ञानी बता रहे हैं।
तो वो असुख से बच के सुख आ जाए।
हाँ,
पुण्य के परिणामों में आ जाएगा।
नहीं, देखो, इसलिए यहाँ पाप शब्द नहीं लिया है, मोहाशक्ति के परिणाम लिया है।
तो पाप परिणाम
नहीं, 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 पुण्य में भी मोहाशक्ति होती है। पाप में भी गुमा सकते होती है, दोनों बात है उसमें। इसलिए पाप परिणाम नहीं लिखे हैं। क्या है, धर्म के क्षेत्र में पुण्य पाप की चर्चा चलती है
जी।
पाप नहीं करना, पुण्य करना, लेकिन ज्ञानियों के बारे में मोह को मारने की बात आएगी। ज्ञानी कहां से अलग पड़ते हैं, सारी दुनिया धर्म के क्षेत्र में चारित्र मोह का विषय हाथ में लेती है, और चारित्र मोह में पुण्य और पाप दो ही होता है, कसाई की मंदता कसाई की तीव्रता, ये चारित्र मोह का स्वरूप है। ज्ञानी का रास्ता ही अलग है, वो दर्शन मोह को हटाने की प्रक्रिया में पहले से ही जाता है।
बराबर है,
ये रास्ता ही अलग है, ये कहने का अभिप्राय है इधर। तो जिसको परिभ्रमण की वेदना आई, उसको दर्शन मोह पर पहला प्रहार हुआ। क्या, परिभ्रमण की चिंता और वेदना में दर्शन मोह पर पहला प्रहार हुआ है, पहला घाव मारा है। फिर उदासीनता आई तो दर्शन मोह पर घाव मारा है, प्रहार किया है दूसरा। फिर मोक्ष का निर्धार किया कि किसी कीमत पे मुझे ये संसार से छूटकर, जन्म मरण से छूटकर पूर्ण शुद्ध होना है। एक दोष का कण भी मुझे नहीं चाहिए, दोष तो नहीं चाहिए लेकिन दोष का एक कण भी मुझे नहीं होगा, तब तो मेरी पूर्ण शुद्धि होगी। इसी का नाम मोक्ष है। ये तीसरा प्रहार हुआ दर्शन मोह पर। किस पर हुआ,
दर्शन
दर्शन मोह पर, क्योंकि मोहा शक्ति पर प्रहार होनी है। ये जो मुमुक्षुता का उन्नति क्रम है सारा का सारा, ये दर्शन मोह को मार मार करके इतना मृत्यु तुल्य दशा में ले जाता है। कब, जब पदार्थ निर्णय होता है तब।
बराबर,
क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में दर्शन मोह को मारा। जिनेन्द्र भगवान की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, कि कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य आठ तेमा मुख्य मोहनी घनाई कहते पाठ। कर्म मोहनीय भेद वे दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपाय। हाँ, श्रीमद जी ने बहुत संक्षेप में ये सब बातें लिखी कि ये सब आठों कर्मों में मोह सबसे बड़ा है, उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह है, उसमें बोध है ज्ञान है तो दर्शन मोह को मारता है, और वितरागता है वो चारित्र मोह को मारती है, हणे बोध वितरागता। तो ये दर्शन मोह इतना बलवान है, इतना बलवान है कि अनंत काल में इसको खत्म नहीं किया हमने, बहुत बलवान है शत्रु। तो ऐसे वो मरता नहीं, वो पहले बीमार होता है, निर्बल होता है, फिर मरता है। और संसार में भी कोई बलवान शत्रु को अगर कोई मारना चाहता है तो सीधा कोई मार नहीं सकता, पहले उसको कमजोर किया जाता है फिर मारा जाता है। ये पॉलिसी तो संसारियों की भी है कि पहले उसको कमजोर कर दो फिर मारोगे तो मर जाएगा, बलवान होगा मरेगा नहीं, उसकी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तो मुमुक्षुता की जो प्रारंभ से लेकर जितनी भी स्टेज है उसमें दर्शन मोह को कमजोर करने की प्रक्रिया चल रही है। ये बात हमारे ध्यान में जब आएगी तब हम उसी लाइन पे चले जाएंगे, और ज्ञानियों ने तो ये अनुभव करके ये लाइन को चौकआउट किया है। जो श्रीमद जी ने लिखा है ये अपने अनुभव से ये सब बात लिखी है, क्योंकि वो जाति स्मरण ज्ञान के धारक थे, पूर्व भव में बहुत परिश्रम किया है, धर्म के अनुष्ठान करने में कोई कसर नहीं रखी है, कभी कोई एक सत्पुरुष मिल गया उनको पूर्व भव में और उन्होंने उसको लाइन बता दी कि देखो तुम्हारी लाइन ये होनी चाहिए, और फिर वो आगे ज्ञान दशा तक पहुंच गए। तब से उन्होंने सत्पुरुष की बात को गाई है और मुमुक्षुता की बात को गाई है, दो बात उन्होंने बहुत गाई है, क्योंकि अनंत काल तो उसमें जाता है ना, ज्ञान दशा में थोड़ी ना अनंत काल जाएगा किसी का। आपको ये लाइन दे रहे हैं कि जब मुमुक्षुता उत्पन्न होती है तो इसका लक्षण क्या, मुमुक्षुता उत्पन्न हुई उसका लक्षण क्या, कि अपना दोष देखने में अपक्षपातता। तो हमारे यहाँ सत्संग की पद्धति ऐसी चलती है, यथार्थ सत्संग इसी को बोला जाता है कि भाई अपने दोष की चर्चा करो रोजाना, सुबह शाम दो टाइम सत्संग चलता है, शाम को ये पहले चर्चा का प्रारंभ होता है। छोटे मोटे सब स्वयं अपनी इच्छा से अपने दोष की चर्चा करेंगे कि मेरे आज ऐसे ऐसे दोष हुए थे। उसमें दोष दो प्रकार के हैं, एक प्रकृति जन्य होते हैं और एक अभिप्राय पूर्वक होता है। तो ये भी आपको देखना है कि आपने दोष तो देखे लेकिन अभिप्राय पूर्वक था या प्रकृति जन्य था, उसमें रस कितना था, तीसरा बात वो है। और जब आपने देखा तो रस में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अभिप्राय में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आपने देखा है, वरना आपने देखा नहीं है, होने के बाद आपके समझ में आया है तो विचार किया है, आपने देखा नहीं है
जी।
यहाँ देखने की बात कर रहे हैं, जो दोष व्यतीत हो जाए इसके बाद इसका विचार आए वो दोष का देखने का प्रक्रिया नहीं है, प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग यहाँ से चालू होता है। स्वाध्याय में हम पढ़ते हैं, विचार करते हैं, विचार की एक भूमिका है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस भूमिका से एक कदम और आगे बढ़ना, इसी का नाम है प्रयोग
जी,
प्रैक्टिकल। तो मुमुक्षु को प्रैक्टिकल साइड में आना है
जी,
अपने परिणमन को वो पकड़ने को सीखता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे जैसे देखने की प्रैक्टिस होती है उसके देखने की नजर पैनी होने लगती है
जी।
फिर सूक्ष्म दोष में देखने में आता है, फिर ज्ञान देखने में आता है, फिर दोष में विभाव स्वभाव देखने में आता है, फिर ज्ञान में ज्ञान स्वभाव देखने में आता है। जब ये देख स्वभाव विभाव कंपैरेटिवली देखने में आता है तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है, विधि निषेधात्मक। और जब भेद ज्ञान प्रयोगात्मक होता है तब स्वानुभव होता है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती है, बीच में कोई सत्पुरुष की पहचान होती है और वे पहचान के बाद स्वरूप की पहचान होती है और फिर स्वानुभव होता है। ये बात पहचान वाले भी बीच में हो जाती है, वो बात सब क्रम से यहाँ श्रीमद जी ने लिया है, कल आगे का विषय लेंगे, बाद यहाँ तक रखते हैं।